ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 सो 33 इज ऑन द बोर्ड
आज हम श्रीमद् भागवतम आठवें स्कंद 12वें अध्याय का 32 और 33 श्लोक लेंगे जिसमें 33वां श्लोक बोर्ड पर है
We'll start with text 32 and then we'll look at text 33.
पहले हम 32वां श्लोक से शुरू करेंगे फिर 33वें श्लोक पर आएंगे.
Just as a maddened bull elephant follows a female elephant who is able to conceive pregnancy, Lord Shiva followed the beautiful woman and discharged semen, even though his discharge of semen never goes in vain.
32वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है. जिस प्रकार गर्भ धारण करने के लिए योग्य हुई हथनी का पीछा मंदान हाथी करता है, उसी तरह शिवजी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे और उनका वीर्य स्खलित हो गया. यद्यपि स्खलित हुआ उनका वीर्य व्यर्थ नहीं जाता.
यत्र यत्र पतन मायाम
यत्र यत्र पतन मायाम
यत्र यत्र पतन मायाम
यत्र यत्र पतन मायाम
रेतस्तस्य महात्मनः
रेतस्तस्य महात्मनः
तने रूपा रूप्यस्य हिन्नश्च
तने रूप्यस्य हिन्नश्च
क्षेत्रं यसं महीपते
क्षेत्रं यसं महीपते
यत्र यत्र पतं मायां
यत्र यत्र पतं मायां
रेतस्तस्य महात्मनः
रेतस्तस्य महात्मनः
तनि रूपस्य हिम्नश्च
तनि रूपस्य हिम्नश्च
क्षेत्रं यशं महीपते यत्र यत्र पतन मायां
यत्र यत्र पतन मायां
रेतस्तस्य महात्मनः
रेतस्तस्य महात्मनः
तने रूप्यस्य हिम्यांश्च
तानि रूप्यस्य हिम्नश्च
क्षेत्रण्यासन् महीपते
क्षेत्रण्यासन् महीपते.
अनुवाद इस प्रकार है. हे राजन, पृथ्वी पर जहां जहां महापुरुष शिवजी का वीर्य गिरा, बाद में वहीं वहीं सोने तथा चांदी की खाने प्रकट हो गई.
Purport by Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Jai. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur comments that those who seek gold and silver can worship Lord Shiva for material appearances.
तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि जो लोग चांदी सोना चाहते हैं वे भौतिक ऐश्वर्य के लिए शिवजी की पूजा कर सकते हैं.
Lord Shiva lives under a bale tree and does not even construct a house in which to dwell.
शिवजी बेल वृक्ष के नीचे रहते हैं और अपने रहने के लिए घर तक नहीं बनाते.
But although he is apparently poverty-stricken, His devotees are sometimes opulently endowed with large quantities of silver and gold.
यद्यपि स्वयं वे निर्धन हैं, किंतु कभी-कभी अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में सोना चांदी प्रदान करते हैं.
What is off of the Guru Parampara speaks. Namah Om.
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
नमस्कृत्य नरं चैव
नरं सरस्वतीभ्याद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी.
Oh, this is one of my favorite pastimes of Srimad Bhagavatam.
तो ये जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का ये मेरा कई प्रसंगों में से एक पसंदीदा प्रसंग है.
Story of Mohini Murti. Mohini Murti is an incredibly gorgeous incarnation of Lord Vishnu.
तो ये मोहिनी मूर्ति अवतार ये मेरा बहुत पसंदीदा लीला है और ये एक अविश्वसनीय और आकर्षक लीला है.
You see, Lord Shiva, he was present at the turning of the ocean of milk.
तो भगवान शिव जब समुद्र का मंथन किया जा रहा था शीर सागर का उस वक्त वहाँ पर उपस्थित थे.
And from the ocean of milk came many wonderful things, including Dhanvantari, the Lord of Ayurvedic medicine.
उस समुद्र मंथन से काफी सारी मूल्यवान चीजें प्रकट हुई जैसे कि धन्वंतरी जो कि आयुर्वेदिक वैद्य हैं के देवता
हैं.
लेकिन शुरुआत में जहर आया था. और वह जहर जो था वो पूरे ब्रह्मांड के पापों का एक सार था.
And it was so severe, it was threatening to destroy the entire universe.
और वो इतना खतरनाक था कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था.
So, because of the scope of the threat, no one could do anything about it. It was, contaminated, just like we have to deal with so much environmental contamination now.
और कोई भी कुछ नहीं कर सकता था जैसा कि अभी हम वातावरण के प्रदूषण के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं उससे हमें जूझना ही पड़ता है.
Like this black river over here.
जैसे कि यहाँ पे काला धुंधकार हो रहा है.
We have the questionable distinction of living next to the most contaminated river in all of India. Kijai.
तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमें पूरे विश्व की सबसे गंदी नदी के पास में रहना पड़ रहा है. महाराज इस नाले का प्रसंग दे रहे हैं कि जो नाला.
That's nothing compared to this poison produced from the churning of the ocean of milk.
लेकिन ये नाला भी उस जहर के सामने कुछ नहीं है जो कि शीर सागर के मंथन से जहर उत्पन्न हुआ था.
So Lord Shiva is a great hero.
तो भगवान शिव यहाँ पे एक नायक हैं.
He volunteered to drink the ocean of poison.
जिन्होंने कि उस जहर का पान किया.
Which nobody else could do.
जो कि कोई और नहीं कर सकता था.
Sometimes people will ask Srila Prabhupada if they can smoke ganja.
तो कई बार लोगों ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या वो गांजा पी सकते हैं?
Because Lord Shiva, he smokes ganja.
क्योंकि भगवान शिव गांजा पीते हैं, इसलिए वो प्रभुपाद से परमिशन मांग रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कोई दिक्कत नहीं, पी सकते हैं।
First of all, you show you can drink an ocean of poison.
लेकिन पहले आप ये स्थापित कीजिए कि आप जहर के समुद्र को भी पान कर सकते हैं।
So he drank it.
तो शिव जी ने वो जहर पिया।
When you look at the paintings of Lord Shiva, you see there's a blue bump in his throat, and that's where he stored it. They couldn't swallow it, so he stored it in his throat. That's why he's known also as blue-throated one.
तो क्योंकि शिव जी ने वो जहर निंगला नहीं था, उन्होंने जहर को अपने कंठ में ही धारण किया, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया।
So, as you know, Lord Shiva is also called Bhagawan.
तो शिव जी को भी भगवान कहा जाता है।
Sometimes that causes confusions in neophyte students of the Vedas.
तो जो वेदों के नए शिष्य होते हैं, जो नया नया पढ़ने लगते हैं वेदों को, वो कई बार इससे भ्रमित हो जाते हैं। तो उन्हें ये कंफ्यूजन होता है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है या शिवजी भी भगवान है।
So, nobody can have the powers which he has got.
तो किसी के पास भी वो शक्तियां नहीं हो सकती जो शिवजी के पास है।
Because he's not an ordinary jiva.
क्योंकि वे एक साधारण जीव नहीं है।
Shivatama. Shivatama is unique category. It is neither Vishnu Tattva, incarnation of Lord Vishnu, nor Jiva Tattva, the fallible individual atmas.
तो शिवजी शिव तत्व हैं, जो कि ना तो विष्णु तत्व हैं और ना ही वे जीव तत्व हैं, क्योंकि जीव तत्व का तो पतन हो सकता है, पतित आत्माएं हैं जीव।
In between is Shiva Tattva.
और विष्णु तत्व और जीव तत्व के मध्य में शिव तत्व है।
And Lord Vishnu is compared to milk, and Shiva Tattva is compared to yogurt or dahi.
Vishnu Tattva ko doodh se tulna ki gayi hai, aur Shiv Tattva ki dahi se tulna ki gayi.
Dahi is certainly milk, but it's a transformation. It's not exactly the same. It's a transformation of milk.
Dahi, halanki doodh se hi aaya hai, lekin wo ek parivartit roop hai. Doodh ka parivartit roop dahi hai.
So Lord Shiva is a transformation of Lord Vishnu, you can say partial expansion.
तो शिव जी भगवान विष्णु के ही परिवर्तित रूप या उनका expansion है, उनका विस्तार है।
But not the expansion in the same way as Govardhanakrishna Vishnu being expansion of Mahavishnu, not in the same way modified expansion and lesser.
तो वैसा नहीं है जैसे कि महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, शिवजी का विस्तार वैसा नहीं है, शिवजी उनसे थोड़ा सा कम है।
Another application of our unique Gaudiya philosophy of Chintaveda Veda Tattva, several things one and different, that applies in explaining relationship of Lord Shiva and Lord Vishnu also.
तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो कि अचिंत्य भेदाभेद है, वो भी इस चीज को समझाता है कि शिव जी और भगवान विष्णु में क्या संबंध है। तो पूरे ब्रह्मांड में शिव जी की पूजा होती है और हर ब्रह्मांड में शिव जी होते हैं।
Therefore, this pastime of Mahinimurti is particularly significant.
इसलिए शिव जी की वजह से, शिव तत्व की वजह से ये मोहिनी मूर्ति अवतार बहुत ही विशेष है।
You see, the story goes, so our story, we have to be careful about this word story.
तो ये कथा इस प्रकार शुरू होती है, लेकिन कथा शब्द से या कहानी से हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
Because sometimes when people hear the word story, they presume it means mythology.
तो कई बार लोग जब कहानी शब्द सुनते हैं, तो वे सोचते हैं कि ये कोई मनोकल्पना है, कोई मनोकाल्पनिक कहानी है।
This is not mythology, it's actual. Itihasas, or they are histories of the universe, not mythology. These are not some kind of man-made or worm-made novels, you know, bestsellers. No.
तो ये कोई मनुष्य, कोई स्त्री या पुरुष के द्वारा मनोकल्पनिक, मनोकल्पित कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये इतिहास है, वैदिक इतिहास.
Bestseller, yes, because the Srimad Bhagavatam being distributed under the order of Sri Prabhupada all over the world.
तो जैसा कि उन पुस्तकों को, जो भौतिक पुस्तकें होती हैं, उनमें बेस्ट सेलर चुना जाता है, तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम जो प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है वो सबसे बेस्ट सेलर है. तो ये कोई साधारण मनुष्य द्वारा श्रीमद् भागवतम नहीं लिखी गई है. तो जो साधारण मनुष्य होते हैं वे आध्यात्मिक, अधिआत्मिक, अधिभौतिक, अधि दैविक कलेशों से उनको पीड़ित किया जाता है. तो ये जो भौतिक पुरुष होता है वो प्रकृति, जो प्रकृति है उसके द्वारा नियंत्रित होता है. लेकिन शिव जी इन सब प्रकृति के प्रकृति के वश में नहीं आते हैं. तो जो शिव जी की जो भार्या हैं वे पार्वती हैं और वे ही दुर्गा हैं, वे ही इस पूरे भौतिक प्रकृति की अधियंता हैं. तो वे शिव जी को, वे प्रथम विस्तार हैं और वे शिव जी को नहीं प्रभावित कर सकते.
Durga and Kali, the expansions of Parvati. But Parvati is a very beautiful woman, and very sweet, very humble, and she is a disciple of Lord Shiva. So the material energy is a disciple of Lord Shiva. So there's no question of Lord Shiva falling under the influence of his wife. He is beyond that.
तो क्योंकि पार्वती जिनसे कि दुर्गा और काली का विस्तार होता है, तो ये पार्वती शिवजी की भार्या है, पत्नी है, और शिवजी की ही ये शिष्या है. तो इसलिए शिवजी इनके इनके नियंत्रण में नहीं आ सकते हैं क्योंकि इनकी शिष्य हैं.
That's why this pastime is particularly significant and funny also, very funny.
और इसीलिए ये जो लीला है ये बहुत ही हास्यास्पद और बहुत विशेष है.
You see the Lord Vishnu promised to distribute the nectar of immortality churned from the ocean of milk between the devas and the demigods. I mean, see, between the devas and the demons. He promised to distribute it.
तो भगवान देवताओं और जो असुर थे उनके बीच में अमृत का वितरण कर रहे थे.
So, Lord Vishnu assumed the special incarnation of Mohini Murti, extremely sexy, beyond imagination. More sexy than all the apsaras of the heavenly planets put together, and they are very sexy. But all of them put together could not compare with the sexiness and sensuality and you could say bodily build of Mohini Murti.
तो जो भगवान विष्णु ने ये वितरण करने के लिए मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया और ये मोहिनी मूर्ति बहुत ही सुंदर थी. ये जो स्वर्ग की सारी अप्सराओं को भी अगर मिला दिया जाए तो उनकी सुंदरता से बढ़कर उनकी सुंदरता आंगिक सुंदरता थी, शारीरिक सुंदरता.
So, the pot of nectar was sitting there, and she took possession of it.
तो जो अमृत कलश था वो समुद्र के वहाँ रखा था और उन्होंने, मोहिनी मूर्ति ने उसे अपने पास ले लिया.
Especially the demons are very interested in sex life.
विशेष रूप से जो असुर होते हैं वो
we see
वो मैथुन के जीवन में ज्यादा आसक्त होते हैं.
Which proves that today's society is demoniac because you can't even open your phone bill without some sexy couple on the cover in full color of your phone bill. Because why? Because everybody's mad after sex.
जैसे कि अभी हम फोन को अगर चालू करते हैं तो फोन चालू होते ही उस पर भी पुरुष और स्त्री के चित्र बने होते हैं. तो आज का जो भौतिक जीवन है, आज के जो भौतिक लोग हैं, ये सभी मैथुन सुख के लिए बहुत आसक्त हैं.
So they pay out crores of rupees to psychological advisors that say, put a couple almost having sex on the cover of your phone bill because, you know, you'll get more Airtel subscribers that way. And so then everybody is, Vodafone does, and everybody else, you know. You see that nowadays the advertising have a woman practically lying on top of the man. It's not socially acceptable, it's no big deal.
तो आजकल ये सामाजिक रूप से भी स्वीकार कर लिया गया है कि पुरुष और स्त्री के चित्र फोन बिल पर भी आपको मिलेंगे और सभी विज्ञापनों में आप पुरुष स्त्री को साथ में देखेंगे. तो ये सामाजिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए ये अभी बहुत बढ़ गया है. क्योंकि जो असुर होते हैं वो मैथुन जीवन की ओर आसक्त होते
हैं.
तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी मूर्ति रूप में आए हैं, तो वे इस चीज को जानते हैं कि असुर इससे आसक्त होते हैं. तो वे अमृत कलश को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं.
Nobody says anything. Now, they were saying no his incarnation of Lord Vishnu, that she is incarnation of Lord Vishnu, they remain silent.
तो देवता क्योंकि जानते थे कि मोहिनी मूर्ति भगवान विष्णु का अवतार है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा.
Demons, they don't know who she is.
लेकिन असुर नहीं जानते थे कि वो स्त्री कौन है.
They only know that they want to engage in sex with her. That's it. This is the demons can only think about sex. We see then the report card for a modern society. This pastime reveals the mentality of our modern society. Demons can only think about sex. They can't think about anything else practically.
तो जो असुर होते हैं, वो खाली वो सिर्फ इस संभोग के लिए और मैथुन के लिए आसक्त होते हैं. तो वहां जो असुर उपस्थित थे वे भी मोहिनी मूर्ति को उसी दृष्टि से देख रहे थे.
So the demons seeing this incredibly sexy woman off the charts, you know, off the charts is when you make a chart, you know, like a Microsoft Office Excel chart, and then it goes like that, and the arrow goes off the chart, you know. So she was an off the chart, you know, manifestations sexy beyond anyone's imagination. We can't imagine such a sexy woman. You know, we can't imagine it. We can't even imagine an upstart. What to speak of Mohini Murthy, who was more sexy and more sexual, you know, than any of all the upstarts put together. That's pretty sexy.
तो क्योंकि इस भौतिक जगत के लोग या जो इस पृथ्वी पर हैं, वे तो अप्सराओं की सुंदरता का भी अनुमान नहीं लगा सकते. तो जो मोहिनी मूर्ति थी वो हमारी कल्पनाओं से परे की सुंदरता सुंदर स्त्री थी.
And if you're inclined to read some cheap sex novel, we say just give it up and read Srimad Bhagavatam instead. If you read Srimad Bhagavatam, there are so many descriptions of sexy women in the Bhagavatam. Yeah, that's a fact. So why waste your time on a rubbish novel? You want to hear about sex and women? You can read Srimad Bhagavatam.
अगर कोई व्यक्ति बाहर के बहुत बाहर के जो लिटरेचर्स या जो पुस्तकें आती हैं जिनमें की ऐसी चर्चाएं होती हैं सुंदरता की, स्त्री की, पुरुष की, तो उन्हें वो छोड़ करके श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऐसे प्रसंग हैं और ये शुद्धिकरण करेगा.
So the demons are looking at Mohini Murthy. She's so beautiful, and she just captured the pot of nectar that they were all after. This pot of nectar of immortality that would come out of the ocean milk after the churning.
तो सभी असुर भी उस अमृत कलश को चाहते थे जो कि क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्रकट हुआ था.
And she grabs it. Nobody says anything. The demons don't say anything. I mean, their whole point was to get that pot of nectar. She takes it. The demons don't say anything because all they can think is, how can I have sex with this woman? So if I'm going to have sex with her, I have to please her. She's got the pot of nectar. Oh well, never mind. Let's see what we can do and how we can capture her.
तो इतने प्रयास किए असुरों ने कि इस अमृत को प्राप्त कर सके, लेकिन जैसे ही मोहिनी मूर्ति वहां आई तो उन्हें देख करके, और मोहिनी मूर्ति ने वो कलश अपने अपने पास ले लिया, लेकिन असुरों को उससे फिर कोई भी उन्हें कोई भी विवाद नहीं था, और वे सिर्फ ये सोच रहे थे कि किस प्रकार इस सुंदर स्त्री के साथ में मैथुन सुख भोगा जाए.
So she's smiling very sweetly.
तो वो बहुत ही सुंदर मुस्कान दे रही थी.
She says to the devas, and demons.
वे देवताओं और असुरों दोनों की ओर देख रही थी.
Now I've really distributed his part of divine ambrosia.
तो वे बड़ी ही मुस्कान के साथ कहते हैं कि अब मैं ये अमृत कलश अमृत आप लोगों में वितरण करने वाली हूँ.
The demons, their eyes are spinning. They're so enamored, so full of lust. Their eyes are spinning.
तो असुर काम के वश में इतने वशीभूत हो गए कि उनकी आंखें घूमने लगी.
Yes, do distribute, yes.
तो असुर कहते हैं कि हाँ हाँ आप वितरण कीजिए.
Then she is directly honest with them, straightforward with them.
और फिर वे स्पष्ट रूप से मोहिनी मूर्ति उनको बोलती हैं.
You know, I may not be fair in how I distribute this nectar. Smile.
तो वे मुस्कान के साथ कहती हैं कि मैं इसका एक समान रूप से वितरण नहीं करने वाली हूँ.
The demons can't say anything negative to this woman because if you want to have sex with some woman, you don't say anything negative.
तो असुर क्योंकि उनसे मैथुन सुख भोगना की इच्छा रखते थे तो इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा.
So the demons say, that's all right, that's okay, no problem.
असुरों ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है.
She just said, I may not be fair and how I distribute this deck. And I said, no problem, whatever you want, it's just fine.
तो असुर कहने लगे, असुरों को अभी अभी उन्होंने बोला था कि मैं इसका सत्यता के साथ वितरण नहीं करूंगी, लेकिन असुरों को इससे कोई दिक्कत नहीं है.
So she's using her sexuality to bewilder the demons, and it always works every time. Otherwise, why do they use these sexy women in advertising? So because it captures your mind and bewilders you. So this is a very old, you know.
तो मोहिनी मूर्ति ने अपनी शारीरिक सुंदरता से उन सबको वशीभूत कर दिया और ऐसा ही आज के विज्ञापनों में भी होता है कि किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को दिखा करके हमारे मन को वश में किया जाता है.
But somehow or other, by the will of the Lord, during the distribution of the pot of nectar, Lord Shiva had, you know, drunk the poison, and for some reason, by the will of the Lord, he left the scene of the pastime. He departed from that situation. He didn't stick around to see what was going to happen next. Because by the will of the Lord, he left.
तो लेकिन शिवजी जैसे जहर पिया उन्होंने और उन्होंने उस स्थान को वहाँ से छोड़ दिया. तो ऐसा भगवान की इच्छा से हुआ कि भगवान की इच्छा से वो उस वक्त उपस्थित नहीं थे जब अमृत प्रकट हुआ और ये वितरण शुरू हुआ.
So, but this was a big deal because you know, here is this gorgeous, totally sexy incarnation of Lord Vishnu, and she's got the pot of nectar and she's playing around with it, deceiving the demons. And so this became the news spread. I mean, in the higher planets, you know, they don't have to use mobile phones; they have their own way of spreading news. You know.
तो ये मोहिनी अवतार जो हुआ और उन्होंने अमृत का वितरण किया, ये घटना जो घटित हुई ये पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी और ये बहुत ही बड़ी घटना थी. और पहले के वक्त इन सूचनाओं के प्रसार के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती थी. अगर अपर प्लैनेट्स में ऊंचे लोगों में मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती.
So this was hot news.
तो ये
flaming hot news. Blazing hot news, big time gossip amongst the sages now, not just amongst anybody, amongst the sages, saints and sages, hot news, wow!
तो सभी साधुओं में और उच्च लोकों में जो निवासी हैं, सभी के लिए एक हॉट न्यूज थी कि भगवान ने ऐसा अवतार लिया और ऐसी लीला की.
Oh, did you hear, Saruji? My God, Lord Vishnu, the Almighty Bhagavan, he assumed the form of a beautiful woman. Oh my God, that's amazing. And it was never happened before. It was the first time ever in history anywhere that Lord Vishnu assumed a female form. Never before.
तो ये घटना हॉट न्यूज इसलिए बनी क्योंकि कभी भी इतिहास में भगवान विष्णु ने किसी स्त्री का रूप धारण नहीं किया था, तो साधु भी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या आपने सुना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया है।
So the whole universe was talking about Mohini Murti and how sexy she was and how beautiful she was. The whole universe is talking about hot gossip, even among saints and sages. And that's all right. See, saints and sages can talk about it because it's Lord Vishnu's pastime. So that's okay. That was not Maya. That was bona fide, just like we're reading about the story about a very sexy incarnation of God. And that's all right, you see, because why? It's transcendental.
साधु और संत भी इस स्त्री भगवान के इस स्त्री रूप की और स्त्री अवतार की चर्चा कर सकते थे क्योंकि ये भगवान विष्णु से संबंधित है। जैसा कि अभी हम भागवतम में ये प्रसंग पढ़ रहे हैं तो भगवान विष्णु से संबंधित होने की वजह से साधु और संत लोग इसकी चर्चा कर सकते थे।
So even the great saints and sages are struck with wonder. Did you hear? My God, it's unbelievable. Did my Lord Vishnu, he assumed the form of a most beautiful woman. There's no other woman like that in the whole material universe. And Lord Vishnu assumed that form. Unbelievable. Wow. Really, really amazing. And they're all talking it up like this. Whole universe is talking it up.
और पूरे ब्रह्मांड और साधु संत सभी इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि मोहिनी मूर्ति कितनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता अविश्वसनीय है, ऐसी स्त्री तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इस तरह से सभी लोग चर्चा कर रहे हैं।
But Lord Shiva wasn't there, so he didn't see her.
और क्योंकि शिव जी वहां पर नहीं थे उस लीला में तो उन्होंने मोहिनी मूर्ति को नहीं देखा था।
He only hears everybody talking about her later.
और बाद में उन्होंने सुना कि सभी लोग मोहिनी मूर्ति की चर्चा कर रहे हैं।
So Lord Shiva has friendly relations with Lord Vishnu.
और शिव जी का भगवान विष्णु के साथ में बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध है।
So he missed out on that pastime. Well, he became part of it later, but I mean to say he wasn't present when the bottom nectar was distributed.
तो शिवजी उस वक्त वहां उपस्थित नहीं थे जब अमृत का वितरण हो रहा था।
So he asked Lord Vishnu, I have heard from the saints and sages that you assumed an unprecedented female form, most beautiful.
फिर शिवजी ने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि मैंने साधु संतों से सुना है कि आपने सबसे सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था।
I want to see that form.
मैं भी उस रूप के दर्शन करना चाहता।
Lord Vishnu smiles. He always smiles. No matter how foolish his devotee is, or big saints or big sages, or even Bhagwan Lord Shiva himself, Lord Vishnu simply smiles.
तो भगवान विष्णु ने वहां पे अपनी मुस्कान प्रकट की। भगवान के भक्त भले ही कितनी भी बड़ी मूर्खता करें, भगवान विष्णु मुस्कान देते हैं हमको।
So he says, you know, I want to see that form. It sounds really amazing. I want to see her.
फिर शिवजी ने कहा कि मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि ऐसा भी रूप आपने प्रकट किया, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ।
So you're the Almighty Vishnu. If you want, you can show it to me right now. That would be first class.
तो भगवान विष्णु ने उन्हें वार्न भी किया, उन्हें चेतावनी दी कि ये सही नहीं होगा।
So Lord Vishnu smiles.
और इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें मुस्कान दी।
That's all right. It's not necessary. Not necessary.
ये जरूरी नहीं है कि आप दर्शन करो ही।
Let's see. Lord Shiva has heard about the beauty of this unprecedented female incarnation.
तो शिवजी ने भगवान विष्णु ने जो बहुत ही सुंदर मोहिनी मूर्ति अवतार लिया था उसका उसे सुना था।
So he's overpowered by lust, actually, but not like our lust, but under yoga maya, he's overpowered by lust simply by hearing about Mohini, how Mohini Murti is so sexy. He says, my God, I got to see that form. I got to see that.
तो शिवजी भी योग माया के वशीभूत होकर काम वासना से वे देखना चाहते थे कि भगवान का इतना सुंदर स्त्री रूप कैसा होगा।
It's like in this mundane world, there's some new movie star and everybody talks her up as being the sexiest movie star in history of Bollywood.
तो ये वैसा नहीं था कि जैसा बॉलीवुड में कोई नया कोई नई अभिनेत्री आती है जो कि बहुत सुंदर है, तो सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि इतनी सुंदर अभिनेत्री है. तो ये वैसा नहीं है जैसा कि भौतिक लोग चर्चा करते हैं सुंदर स्त्री के लिए.
So Lord Vishnu says, it's not necessary, not necessary, it's not.
तो भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं कि जरूरत नहीं है आपको देखने की.
No, no, I really want to see it. It sounds just too amazing. It's never, you've never shown a form like that before. I've never seen a form like that before. And you've never shown it before. I got to see that.
तो शिव जी लेकिन जिद करते हैं कि आपने ऐसी सुंदर स्त्री का रूप लिया है जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है, ना तो आपने इससे पहले कभी ऐसा रूप लिया, ना मैंने ही कभी देखा है, तो मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ. तब भगवान विष्णु उन्हें चेतावनी देते हैं कि हो सकता है आप अपने इंद्रियों पर वश खो दें.
Don't you know who you're talking about? I'm that mighty Bhagavan Lord Shiva. I have perfect control of my senses. What are you talking about? I've never lost control of my senses ever. What are you talking about? There's no possibility I could lose control of my senses. Come on. I want to see it. Really, I do.
तो लेकिन शिवजी फिर जिद करते हैं कि मैंने आज तक कभी अपने इंद्रियों पर वश नहीं खोया है. आप मैं नहीं खोऊंगा अभी भी. मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ.
Lord Vishnu says, well, okay, I'm still smiling, because no matter how foolish his Lord is, Lord Vishnu is always smiling, you know? That's our God. He's always smiling, good nature, very good nature.
तो लेकिन भगवान विष्णु अभी भी शिव जी को की ओर मुस्कुरा कर देखते रहते हैं, क्योंकि भगवान भले ही भक्त कितनी भी मूर्खता करें, वे हमेशा भक्त को मुस्कान के साथ ही देखते हैं.
He says, all right, I'll show you, but don't say I didn't warn you.
तो भगवान विष्णु कहते हैं उनसे कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूप, लेकिन मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी.
So, he reveals his form of Mohini Murti to Lord Shiva.
और फिर भगवान विष्णु उन्हें मोहिनी मूर्ति रूप दिखाते हैं.
So we'll back up a little bit in the previous verses to describe exactly what happened.
तो हम कुछ पीछे जाएंगे, पीछे के श्लोकों में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था.
So he had just asked Lord Vishnu to assume this form.
शिवजी ने जब बोला, जब भगवान से अनुरोध किया कि आप रूप का दर्शन दीजिए.
So going back to the 16th verse, Lord Vishnu says, "O best of the demigods," this 16th verse, "O best of the demigods, I shall now show you my form that is very much appreciated by those who are lusting."
तो फिर भगवान विष्णु शिवजी से कहते हैं, हे देव श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है.
Since you want to see that form, I shall reveal it in your presence.
क्योंकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो, अतः मैं तुम्हारे समक्ष उसे प्रकट करूंगा.
So Prabhupada comments that the Lord Shiva is desiring to see Lord Vishnu reveal a most attractive form of a woman is certainly a joking affair.
तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि शिवजी द्वारा भगवान विष्णु से स्त्री का सबसे अधिक आकर्षक रूप प्रकट करने का कहना निश्चय ही एक परिहास का विषय था.
Because he was confident he could not be agitated by a so-called beautiful woman. This is Prabhupada's comment.
क्योंकि शिवजी जानते थे कि वे किसी तथाकथित सुंदर स्त्री द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते थे.
He has his own form of pride, his own form of ego, worship.
तो शिवजी में एक अपने ही प्रकार का एक अहंकार है.
The demons may have bewildered, he thought to himself, but since even the demigods could not be agitated, or to speak of me, who am the best of all the demigods.
तो शिवजी ने सोचा, भले ही दैत्यगण सम्मोहित हुए हों, किंतु देवता तो सम्मोहित नहीं हुए, तो मेरे बारे में क्या कहना? मैं भी तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हूँ.
So then Lord Vishnu decided, all right, I'm going to impersonate a woman, I'm going to show that form.
फिर भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, मैं तुम्हें अपना स्त्री रूप दिखलाऊंगा, किंतु यदि
I will show you my form of a woman. If you become agitated by lusty desires, don't blame me. And Lord Shiva said, me? Come on. I have perfect sense control. I'm the most austere person in the universe. I couldn't possibly become agitated. He's boasting like this.
तो भगवान विष्णु ने आगे कहा कि किंतु यदि तुम काम वासना से विचलित हो गए तो मुझे दोष मत देना. और शिव जी कहते हैं, मैं कैसे काम वासना के वशीभूत हो सकता हूँ, मैं तो सबसे बड़ा तपस्वी हूँ.
So Shukadeva Goswami in the 17th verse says, after speaking this way, the Supreme Personality of Godhead Vishnu immediately disappeared, and Lord Shiva remained there with Uma, his beautiful wife, looking for him all around with moving eyes. So now he's agitated already, hasn't even seen it yet. He's already agitated, he wants to see this sexy form.
और इसके बाद सत्रहवें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर्धान हो गए और शिवजी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते हुए उन्हें ढूंढते रह गए. तो इससे पता लगता है कि शिवजी बहुत उद्वेगित हो गए थे, उत्तेजित हो गए थे.
18th verse. Therefore, in a nice forest nearby, full of trees with reddish pink leaves and varieties of flowers, Lord Shiva saw a beautiful woman playing with a ball.
18वें श्लोक में आगे शुकदेव गोस्वामी ने बताया, तत्पश्चात शिवजी ने लाल गुलाबी पत्तियों तथा विविध प्रकार के फूलों से भरे निकट के एक रमणीक जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा.
For some reason, this is considered very sexy in Vedic culture. A woman playing with a ball, because several times throughout the Srimad Bhagavatam, a woman playing with a ball who is very sexy is described, not just this pastime, but other places throughout the Bhagavatam. A sexy woman playing with a ball is described. Like I say, men, if you want to read don't waste your time on a rubbish novel, you want to hear about sex, read Srimad Bhagavatam.
श्रीमद् भागवतम में कई जगह ये चर्चा आती है कि स्त्री की सुंदरता का वर्णन उसको गेंद के साथ खेलते हुए वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में. तो जो भी मनुष्य ऐसी स्त्री प्रसंग में रुचि रखते हैं तो उन्हें कोई भौतिक ग्रंथ या भौतिक पुस्तकें ना पढ़ने के बजाय श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए. तो 18वें श्लोक में आगे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, उसके कूले एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा करधनी से सुशोभित थे.
Don't blame me. This is Srimad Bhagavatam. This is our sacred scripture, man. If you want to read about sexy women, keep listening.
महाराज कह रहे हैं कि मुझे दोष मत दीजिएगा, ये श्रीमद् भागवतम है जिससे मैं पढ़ रहा हूं.
So she is bouncing this ball.
तो वो स्त्री गेंद के साथ खेल रही है.
Because the ball was falling down and bouncing up as she played with the ball, her breast trembled and became the weight of and because of the weight of those breasts and her heavy flower garlands, her waist appeared to be all but breaking at every step.
तो आगे 19वें श्लोक में, चूंकि गेंद ऊपर तथा नीचे उछल रही थी, अतः वह जब उससे खेलती तो उसके स्तन हिलते थे और जब वह अपने मूंगों जैसे
As her two soft feet, which were reddish like coral, moved here and there. So she's very, sexy and very beautiful.
तो आगे बताते हैं, वह अपने मूंगों जैसे लाल मुलायम पांवों से इधर उधर चलती तो उन स्त्रियों के भारी बोझ से तथा फूलों की भारी माला से उसकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी. तो इस वर्णन से पता लगता है कि मोहिनी मूर्ति बहुत सुंदर अवतार है.
The woman's face was decorated by broad, beautiful, restless eyes which moved as the ball bounced here and there from her hand.
20वां श्लोक, उस स्त्री का मुखमंडल चौड़ा तथा सुंदर था और चंचल आंखों से सुशोभित थी और वे आंखें उसके हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के साथ इधर उधर घूम रही थी।
The two brilliant earrings on her ears decorated her shining cheeks like bluish reflections, and the hair scattered off her face made her even more beautiful to see.
उसके कानों के दो जगमगाते कुंडल उसके चमकते गालों पर सांवली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे।
Should I continue? Guys, should I continue? Set aside that trashy sex novel and... Text 21. As she played with the ball, the sari covering her body became loose.
आगे 21वें श्लोक में वर्णन है, जब वह गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढके रखने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती।
And her hair scattered.
और उसके बाल बिखर जाते।
She tried to bind her hair with her beautiful left hand, and at the same time she played with the ball by striking it with her right hand.
वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी।
This was so attractive that the Supreme Lord, by his internal bonze in this way, captivated everyone.
यह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस तरह हर एक को मोह दिया।
So Prabhupada comes to Lord Shiva was not to be captivated by the external potency, but because Lord Vishnu wanted to captivate him also, he exhibited his internal potency to act the way his external potency acts on captivating ordinary living beings.
प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, यद्यपि शंभु को इस बहिरंगा शक्ति से सम्मोहित नहीं होना चाहिए था, किंतु भगवान विष्णु उन्हें भी मोहित करना चाह रहे थे, अतः उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को उसी तरह से कार्य करने दिया जिस तरह से उनकी बहिरंगा शक्ति सामान्य व्यक्तियों को मोहित करने के लिए करती है।
Text 22. While Lord Shiva observed the beautiful woman playing with the ball, she sometimes glanced at him and slightly smiled in bashfulness.
आगे 22वें श्लोक में, जब शिवजी इस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे, तब वह कभी इन पर दृष्टि डालती और लजाकर से थोड़ा हंस देती।
As he looked at the beautiful woman and she watched him, he forgot both himself and that Uma, his most beautiful wife, as well as his associates nearby. He forgot everything except Mohini. Uma is another name for Parvati.
जो ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने इन्हें ताका, त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा और अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए।
So, text 23. When the ball leaped from her hand and fell at a distance, the woman began to follow it.
23वां श्लोक, जब गेंद उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी।
But as Lord Shiva observed these activities, a breeze suddenly blew away the fine dress and belt that covered her.
किंतु जब शिवजी इन लीलाओं को निहार रहे थे तो अचानक वायु का झोंका उसके सुंदर वस्त्र तथा उसकी करधनी को जो उसे ढके हुए थे उड़ा ले गई।
Text 24. Thus, Lord Shiva saw the woman, every part of whose body was beautifully formed, and a beautiful woman also looked at him.
24वां श्लोक, इस प्रकार शिवजी ने उस स्त्री को देखा, जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था, और उस सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा।
Therefore, thinking that she was attracted to him, Lord Shiva became very much attracted to her.
अतः यह सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिवजी उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए।
So because she was glancing at him, Lord Shiva, you know, he also has ego. That's the point here.
तो क्योंकि मोहिनी मूर्ति शिवजी की ओर देख रही थी, तो शिवजी को भी अहंकार आ गया।
So he's thinking like an ordinary man.
शिव जी ये विचार करने लगे कि मैं एक साधारण पुरुष नहीं
हूं. Oh, this is really cool. She likes me. Wow. Okay, great. Let's go for it.
शिव जी ऐसा विचार करने लगे कि ये स्त्री भी शायद मुझे पसंद करती है.
He, now he wanted to touch her because he figures, well, she likes me, and so let's get into it.
तो शिव जी ने भी उनका स्पर्श करना चाहा.
Then text 25, Lord Shiva has sense taken away by the woman because of lusty desire to enjoy with her, became so mad for her that even in the presence of Bhavani, Bhavani is another name of Parvati, he did not hesitate to approach her.
आगे 25वां श्लोक. उस स्त्री के साथ रमण करने की कामेच्छा के कारण अपना विवेक खोते हुए शिवजी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उसके समीप जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए.
The text 26. The beautiful woman was already naked, and when she saw Lord Shiva coming towards her, she became extremely bashful.
आगे 26वां श्लोक. वह सुंदरी पहले ही नंगी हो चुकी थी और उसने देखा कि शिव जी उसकी ओर चले आ रहे हैं.
But she hid herself.
तो वह अत्यंत लज्जित हुई.
She kept smiling, but she hid herself among the trees and did not stand in one place.
इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के पीछे छिपा लिया. वह किसी एक ही स्थान पर खड़ी नहीं रही.
27. His senses being agitated, Lord Shiva, victimized by lusty desires, began to follow her just as a lusty elephant follows a she elephant.
आगे 27वां श्लोक. शिवजी की इंद्रियां विचलित थी और वे काम वासनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथिनी का पीछा करता है.
28. After following her with great speed, Lord Shiva caught her by the braid of her hair and dragged her near him.
आगे 28वां श्लोक. तेजी से उसका पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया.
Although she was unwilling, he embraced her with his arms.
फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने अपनी बाहों में भरकर उसका आलिंगन कर लिया.
Text 29 and 30. Being embraced by the Lord Shiva, like a female elephant being embraced by a male, the woman whose hair was scattered swirled like a snake.
आगे 29 और 30 श्लोक. जिस तरह हाथी हथनी का आलिंगन करता है, उसी तरह वह स्त्री जिसके बाल बिखरे थे शिवजी द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरह सरकने लगी.
Okay, this woman who had large high hips was a woman of Yogamaya presented by the Supreme Personality of Godhead.
हे राजा, यह बड़े और ऊंचे नितंबों वाली स्त्री भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी.
She released herself somehow or other from the fond embrace of Lord Shiva's arms and ran away.
उसने अपने आप को जिस भांति शिवजी के आलिंगन से छुड़ाया और वह भाग गई.
Point here is that Lord Vishnu is stronger than Lord Shiva. This is one of the points here. Yes, he was embracing her very strongly. He's the most powerful male in the universe. He's embracing her, and she just slips away like it's no big deal. So this proves that Lord Vishnu is stronger than Lord Shiva.
तो भगवान विष्णु शिवजी से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं. इस बात का प्रमाण यहाँ से मिलता है कि हालांकि शिवजी ने उन्हें जोर से आलिंगन किया था, लेकिन वो स्त्री शिवजी के हाथों से निकल गए.
So in text 31, he begins following her. Prabhupada explains that Lord Shiva cannot be victimized by Maya. Maya is his wife. She cannot be victimized by Maya. So this is all under Yoga Maya, or the internal potency.
आगे 31वें श्लोक में शिवजी मोहिनी मूर्ति का पीछा करने लगते हैं. तब प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि शिवजी माया का शिकार नहीं हो सकते. अतः यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति से पीड़ित किए जा रहे थे.
So Lord Shiva followed the beautiful woman and discharged semen, even though his discharge of semen never goes in vain. So he's so lusty and sexually agitated, he is discharging semen.
तो अब 32वें श्लोक में उसी तरह शिवजी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे और उनका वीर स्खलित हो गया.
One of the main points of this pastime is that Lord Vishnu is always more powerful than even Lord Shiva, and Lord Shiva is the most powerful male in the universe. But once again, there are many other stories in Krishna book alone showing how Lord Krishna is more powerful than Lord Shiva.
तो इस प्रसंग से, इस कथा से ये पता लगता है कि भगवान विष्णु शिवजी जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं, उनसे भी भगवान विष्णु शक्तिशाली हैं. और कृष्ण पुस्तक में भी कई जगह यह पता लगता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण शिवजी से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं.
So Lord Shiva is making a complete fool out of himself by chasing after this naked woman.
तो शिवजी अपना मजाक बना रहे हैं इस प्रकार एक स्त्री का पीछा करके.
Upcoming verses will describe. And the next verse, 34, will describe that Lord Shiva was following Mohini Murti everywhere near the shores of rivers and lakes, near the mountains, near the forests, near the gardens, and wherever there lived great sages. That was text 34.
तो आगे ये चर्चा होगी, जैसे कि 34 श्लोक में है कि शिवजी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास तथा जहां कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे गए.
So Lord Vishnu was purposely dragging Lord Shiva in front of all these great saints, sages like Narada and Shiva Vyasadeva and so many other sadhus in the forest doing their meditations, penance, austerities like that. He's purposely dragging Lord Shiva chasing in front of this naked woman just to show the sages who's the boss, you know, who's the supreme. They get the point. They can see, yep, Lord Shiva is subordinate to Lord Vishnu. Just see how he's conquering my Lord Vishnu.
तो भगवान विष्णु जानबूझकर शिवजी को नारद मुनि और अन्य ऋषियों के सामने लेकर गए, क्योंकि भगवान विष्णु ये चाहते थे, ये स्थापित करना चाहते थे कि शिवजी से भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान विष्णु हैं.
So Vishnu got Chavani Thakur, he comments that therefore nobody should think they're free from this sex attachment.
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 34वें श्लोक में टिप्पणी करते हैं कि मोहिनी मूर्ति शिवजी को बहुत से स्थानों तक घसीट कर ले गई, विशेषकर जहां महान ऋषि रहते थे, जिससे उन्हें शिक्षा दी जा सके कि उनके शिवजी एक सुंदरी के
पीछे.
और इस तरह उन्होंने स्थापित किया कि किस तरह शिवजी एक सुंदरी के पीछे पागल हो गए.
So any questions?
कोई प्रश्न?
Yes.
Hare Krishna Maharaj, dhanyavad, thank you very much for this beautiful lecture description. Maharaj, I have a question that we have heard that God is most attractive. So from very beginning I have this question, God is most attractive, he must be a woman. From this past time also we see.
Repeat the question please.
Person
must be a female. Like
this past time, it appears.
So repeat his question in Hindi.
प्रहलाद चरण प्रभु का ये प्रश्न है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भगवान सर्वाकर्षक हैं, सबसे सुंदर हैं, तो मुझे अपने कृष्ण भावनामृत के शुरुआत से ऐसा लगता था कि शायद सुप्रीम जो परम भगवान है वो एक स्त्री होंगे. और इस लीला से भी ये पता लगता है कि मोहिनी मूर्ति कितने सुंदर हैं.
So you didn't get cheated. You didn't get cheated after all.
तो महाराज ने उत्तर दिया कि इस तरह आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, कि आपका जो अंदाजा था कि भगवान परम भगवान एक सुंदर स्त्री होने चाहिए,
because God is one.
क्योंकि भगवान एक है.
But to increase his pleasure, God is divided in two.
और क्योंकि भगवान अपना आनंद की वृद्धि करना चाहते थे, इसलिए वही एक भगवान अपने आप को दो में विभाजित करते हैं. और वो दो कौन है? वे हैं राधा और कृष्ण.
So, Radharani is the pleasure potency of Krishna.
और राधा रानी जी भगवान की आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, लादनी शक्ति है.
Because of that fact, he cannot do anything without her.
तो इसी कारण से भगवान कृष्ण कुछ बिना राधा रानी जी के कुछ भी नहीं कर सकते हैं.
He can't even play with his coward boyfriends.
वो अपने ग्वाल मित्रों के साथ भी नहीं खेल सकते हैं.
He can't eat prasad at the house of his own mother. He can't do anything enjoyable. He can't enjoy anything without her influence as Ladini Shakti. It is not possible.
तो भगवान कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं बिना अपनी लादनी शक्ति के.
She is present in the form of the Srivats on Krishna's chest also, not just Lord Krishna. So we can understand that it could not be the goddess of fortune who is present on the chest of Krishna, because that would be rasavas or incompatible.
और भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर भी राधा रानी उपस्थित हैं श्रीवत्स के रूप में, और क्योंकि वे भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल पर हैं, इसलिए वे लक्ष्मी नहीं हो सकती हैं, वे श्रीमती राधा रानी ही हैं.
So on the chest of Krishna, Govinda, Tribhanga, Krishna, the Srivats is Srimati Radharani.
तो जो त्रिभंग श्री कृष्ण हैं, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स के रूप में राधा रानी हैं.
Sometimes in lectures, Prabhupada did not say it very often, but at least one lecture I found where Prabhupada said, "We are part and parcel of Radharani."
हालांकि प्रभुपाद ने ऐसा कई जगह नहीं कहा है, लेकिन कुछ जगह मैंने सुना है कि हम जीव श्रीमती राधा रानी जी के ही विस्तार हैं.
So Srimati Radharani is the supreme personality of goddess. And we are part and parcel of Radharani, also not just part and parcel of Krishna.
हम सिर्फ भगवान कृष्ण के ही अंश नहीं हैं, हम श्रीमती राधा रानी जी जो कि परम भगवान हैं, उनके भी अंश हैं.
So therefore, your original theory is correct.
इसलिए ये वास्तविक जो है, वास्तविक थ्योरी जो है, वो सही है.
God is the most beautiful form of woman. In the form of Radhika.
तो भगवान स्त्री के रूप में सबसे सुंदर स्त्री हैं, और वो हैं श्रीमती राधा रानी.
And she is not different from Krishna.
और वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं.
So if somebody wants to worship a female form of God, they can worship Radharani.
तो कोई अगर भगवान की स्त्री रूप में पूजा करना चाहता है, तो उन्हें श्रीमती राधा रानी जी की पूजा करनी चाहिए.
By worship Radharani, no, no, by the way, Krishna. Because she looks and says, oh, who is that? Who is that that's worshipping my Krishna?
तो क्योंकि राधा रानी जी की पूजा करने से हमें भगवान कृष्ण की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि वह देखती हैं कि ये कौन है जो मेरी पूजा कर रहा है.
This is her way of seeing things.
ये श्रीमती राधा रानी जी का देखने का तरीका है.
She says to Krishna, oh, that devotee, he's so much better devotee than I am. Please bestow your mercy on him.
Radha Rani Bhagwan Krishna se kehti hai ki ye bhakt mujhse bhi zyada aapki seva kar raha hai, mujhse bhi acha hai, to kripya is par apni kripa kijiye.
That's why all Guru Vaishnavas go through Radhika to attain Krishna.
इसीलिए सभी गौड़ीय वैष्णव राधा रानी जी के माध्यम से ही श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं.
Okay. Yes.
हरे कृष्ण मनोज, जैसे लेक्चर सुन हुआ तो बता रहे थे कि शिवजी जो